Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो मेरे पति मेरे पत्नी मेरे अनुकूल होने पर मेरी जो प्रसन्नता होगी, तब उसका पति उसके अनुकूल हो जाए, उसकी पत्नी उसके अनुकूल हो जाए, मैं उसका पति हूं, वो मेरा पति है, मैं उसका पत्नी हूं, है? वो मेरे अनुकूल हो जाए, मुझे प्रसन्नता है, तो मैं उसके अनुकूल हो जाऊं तो वो जरूर प्रसन्न होगा। ये क्या हो गया? हृदय की एकता, भावना की एकता। और ये भावना की एकता ही एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे के उपकारक बन जाएंगे, वो अपकारक कभी भी नहीं बन सकते। तो शंकराचार्य जी एक साधारण प्राकृत पुरुष की भूमिका में आकर अपने भाव, मान लो एक प्राकृत पुरुष अपना भाव परमात्मा के सामने रख रहा है, वो प्राकृत पुरुष को भगवान से मुलाकात तो हो नहीं पा रही होगी, और शंकराचार्य जी कोई साधारण प्राकृत पुरुष तो है ही नहीं, अब प्राकृत पुरुष है, भगवान से मुलाकात हो गई। तो मान लो कि शंकराचार्य जी ने एक प्राकृत पुरुष की बात भगवान के सामने रख दी, जो प्राकृत पुरुष ये सोचता था कि भगवान मिले तो मैं उनसे ये बात कहूंगा। ध्यान देना, ये शब्दों पर ध्यान देना, प्राकृत पुरुष क्या कहेगा? यदि भगवान मिले तो उनसे मैं ये सारी बात कहूंगा, ये सोचकर बैठा है कौन? प्राकृत पुरुष। और क्योंकि उसकी भावना से परिचित हो गए कौन? कि संस्कृत पुरुष, संत पुरुष, उसकी भावना से परिचित हो गए, तो उसको तो भगवान नहीं मिल रहे हैं, मिल गए किसको? संत पुरुष को। तो संत पुरुष ने क्या किया? उस प्राकृत पुरुष की हृदय की भावना अपने माध्यम से भगवान के सामने रख दिया। ये फॉर्मूला संतों के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में दिमाग में बैठाओगे तो ये श्लोक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो हजार टिप्पणी करोगे तुम। ध्यान दो, ध्यान दो, देखो क्या कह रहे हैं। प्राकृत है लेकिन वो मुमुक्षु है, साधक है। प्राकृति भी पामर नहीं है, साधक है। प्राकृत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पामर है विषयासक्त, दूसरा साधक है मुमुक्षु है, दोनों प्राकृत है। तमेको लोकानां, शंकराचार्य कहते हैं, परम फल दो दिव्य पदवीम, तुम एक लोकाना, सभी लोक में, चाहे भूलोक हो, चाहे भूवरलोक हो, चाहे स्वरलोक हो, 14 लोक है, सभी लोक, हर लोक में, लोक लोकांतर में, तुम एक परम फलदः, सभी लोक में, हर लोक में उन लोकवासी जीवों को परम फल, अविलसित फल प्रदान करने वाले आप ही एक है। आपके अलावा लोक लोकांतर में रहने वाले लोकवासी, भारत में रहने वाले भारतवासी, तो लोक में रहने वाले लोकवासी, उन सारे लोकवासियों के अपने अपने अभिलाषा, अलग अलग अभिलाषा होंगे, सभी की एक ही अभिलाषा नहीं है, सभी का एक ही मनोरथ नहीं है, अलग अलग लोकों के अलग अलग मनोरथ है। स्वर्ग में रहने वाले देवता तुम्हारे यहां के हापुस आम के रस के लिए लालायित नहीं होंगे, रसपुरी के लिए तड़फेंगे नहीं, वो तो अमृत पान करने वाले क्या रसपुरी में तड़फेंगे वो, है। स्वर्ग में रहने वाले देवता, लोकवासी, स्वर्गवासी तुम्हारे हुंडा सिटी कार के लिए तड़पेंगे नहीं। अरे वो तो वहां चिंतामणि से युक्त रथ विद्यमान है, कल्पना करते ही चलने वाली रथ विद्यमान है, तो पेट्रोल खाकर कार्बन छोड़ने वाली कार के लिए क्या उतड़पेंगे वो। उनकी कल्पना अलग है, उनकी अभिलाषा अलग है, हमारी अभिलाषा अलग है, क्योंकि उनकी और हमारी भूमिका ही अलग है। तो सब लोक में रहने वाले, क्योंकि आप हर लोक में हैं, आप हर लोक में, क्यों? क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक होने के कारण हर लोक में हैं। हर लोक में रहने वाले लोकवासी अलग अलग उपाधि के चलते अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन आप एक ही है, इसलिए लोकानाम परम फलदा तम एक। उन लोगों के द्वारा अभिलषित जो फल प्रदान करने वाले व्यक्ति, आप ही एकमात्र है, एकमात्र आप हैं। आप सभी के अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं। चींटी की अभिलाषा क्या रहती है बोलो? चींटी की अभिलाषा ये रहती है कि थोड़ी सी एक चीनी का दाना मिल जाए। तो एक दाना चीनी मिले तो चींटी को कितने दिन चलेगा गुजारा? एक हफ्ता चलेगा। एक हफ्ते में पूरा करे कि न करे भगवान जाने। एक चींटी एक चीनी के दाने को कितना दिन गुजारा कर सकती है? एक ही दिन खत्म कर जाएगी वो। और तुम्हें एक दिन एक दाने से गुजारा चलेगा? एक किलो से भी गुजारा नहीं चलेगा। हाँ, हमारा आश्रम है देवघाट, गलेश्वर आश्रम नेपाल में, अन्न छत्र चलता है, सुबह और शाम दोनों टाइम फ्री भोजन, फ्री चाय है? अब विचार करो, एक महीने में 25 किलो तो चाय पत्ती लगता है, पत्ती 25 किलो चाय पत्ती खर्च होता है। दो टाइम रोज चाय बनाते हैं सबके लिए फ्री, चाय बनाकर बाहर रख देते हैं, आओ जो भी तीर्थयात्री आओ, जो आओ पियो जाओ। अब चीनी कितना लगता होगा बोलो? एक दाना से चलेगा? चींटी को तो चल जाएगा, हमको चलेगा? महीने में 2 क्विंटल चीनी चला जाए बोलो। 200 आदमी तो रोज खाना खाते हैं, तो तेल कितना लगेगा 200 आदमी के लिए? 200-250। और कोई पर्व विशेष आ गया, अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमासी, एकादशी है, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, तो और यात्री बहुत आ जाएंगे और सबको व्यवस्था है, तो बोलो कितना खर्च होगा? लोग कहते महाराज आप कैसे चलाते हो, इतना सब खा रहे हैं सुबह शाम, ये आपका आश्रम है, आप कैसे चलाते हो? हमने कहा सर्वव्यापक परमात्मा बंबई में भी रहता है, उसको तो पता है ना कि आश्रम चलाना है, तो बंबई वासियों को भी प्रेरणा देता है अंदर है, वो भी देता है, ये नेपाल से आए स्वामी जी है, थोड़ा बहुत देना चाहिए, कह देता है वो, तो लोग लाके देते हैं, उसी चलते। वही परमात्मा चला रहा है, हम थोड़ी चला रहे, हमारी क्षमता है। आज के जमाने में एक पेट अपने आप भरना मुश्किल पड़ रहा है, तो इतना 200-250 आदमी को खाना खिलाने की क्षमता हमारे में कहां से आएगी? वो तो वही परमात्मा कर रहा है, सर्वव्यापक है, फलदह, ये सबको अभिलषित वस्तु देने वाले। तो एक वहां एक दूसरी समस्या आ गई, पहले अन्न छत्र नहीं खोला था, बेचारे साधु संत वहां रहने वाले, गरीब साधु संत, वृत्त, असहाय, अशक्तों के लिए भोजन व्यवस्था की बहुत कमी थी, तो बहुत तकलीफ था। अब हमने अन्न छत्र खोल दिया वहां, तो जब से अन्न छत्र खोल दिया तो सबके लिए अच्छी व्यवस्था हो गई, घंटी बजती, आते हैं, खाते हैं, भजन करते हैं, गंगा नहाते हैं। लेकिन इतने सबके भोजन बनने के कारण सब भोजन करके बाहर निकलते हैं, तो फिर कुत्ते भी उसी तरह गांव के हो गए, लोकल कुत्ते। इतना कुत्ते आने लगे कि 200 आदमी जो बाहर निकलेगा उनकी थाल में जो जूठन रहेगी तो कम से कम 20-25 कुत्तों के लिए तो ऐसे ही पेट गुजारा हो जाएगा। वो कुत्ते फिर आश्रम छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि वही सुबह शाम खाने को मिलता है, जूठन मिल जाता है उनको, फेंके हुए गिरे हुए, उसी से उनका पेट गुजारा होता, दूसरे जगह क्यों जाएंगे वो। तो लोग कहने लगे कि आश्रम में अन्न छत्र खोलने से ये कुत्तों ने हैरान किया, अब क्या करोगे महाराज, ये तो होता ही है, होता ही है, अब क्या करोगे, गिरता है तो कहां फेंके उसको, थाल में जूठन रहता है वही खाएंगे, उसी के लिए जी रहे हैं तो अब क्या करोगे। लेकिन संसारी ऐसे हैं कि दूसरे के जूठन खाकर जी रहे हैं उनके प्रति भी नफरत करने वाले हो गए भाई, नफरत हो जाता है, क्योंकि जब वह हमारे प्रतिकूल व्यवहार करने लगते हैं तो फिर हमारी जूठन खाते हैं, और हम जब गहरी निद्रा में सोए हों तो कुत्ते दो लड़ने लग जाते हैं तो क्या हुआ, हमारे जूठन खाके हमारे लिए विक्षेप करते, संसार तो ऐसे चलता है। तुमेको लोकानां परम फल दो, फल दो प्रकार के, परफल अपर फल, समझे कि नहीं। यूं तो चार प्रकार के हैं फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, यही तो फल है। लेकिन यहां परम फल दो कोटि में रख दिया, अर्थ और काम उसको अपर फल कहा और धर्म और मोक्ष को पर फल कहा। तो मुमुक्षुओं को ज्ञान की साधना देने वाले आप हैं और उस साधना का फल मोक्ष देने वाले भी आप ही हैं, इसलिए पर फल है। और कोई व्यक्ति यदि अर्थ काम की कामना से यदि आपकी आराधना करता है तो वह कामाशक्तों के लिए, पामरों के लिए, विषयाशक्तों के लिए अपर फल देने वाले भी तो आप ही हैं, क्योंकि फल देने वाले तो आपके अलावा दूसरा तो है ही नहीं ना? फल देने वाला तो तुम ही एक। अब ये अलग चीज है, किसी नाम से कोई पुकार रहा है, किसी नाम से कोई पुकार रहा है, किसी नाम से कोई पुकार रहा है, जो भी संसार में तीनों लोक में जिस नाम से भी पुकार रहा है वो आपके ही नाम है और आप ही उनके अभिलषित वस्तुओं को उनके चाहे अनुसार को फल देने वाले आप ही हैं, इसलिए अपर फल अर्थकाम और पर फल धर्म मोक्ष, ये दोनों प्रकार के फल देने वाले आप ही हैं। बाणासुर को भगवान शिव ने क्या नहीं दिया बोलो, मैंने स्तोत्र सुना है आप लोगों ने, पढ़ते हो रोज ही, क्या नहीं दिया भगवान शिव ने। पुष्पदंताचार्य जी ने क्या सुंदर वर्णन कर दिया है, यद्रिद्धिम सुत्राम्णो बरद परमोच्चैरपिसती अधश्चक्रे बाण। देख लो, यद्रिद्धिम सुत्राम्ण, इंद्र का जो स्वर्ग का साम्राज्य था, इंद्र का जो स्वर्ग का साम्राज्य है वह सामान्यतया हम लोगों के दृष्टि में या सामान्य प्राणियों के दृष्टि में सर्वोच्च समृद्धि है, है? आजकल देश की समृद्धि की चर्चा हो रही है ना, है? कहते हैं कि अमेरिका समृद्ध है, यूरोप समृद्ध है, चाइना समृद्ध है, है? विकसित है, विकासशील है, परिभाषा करते हैं कि नहीं, वो समृद्ध देश, हाँ देख लो, और हमारी भारत की भी समृद्धि तो रोज पेपर में पढ़ने में आ रहा है, भारत भूमि की समृद्धि नहीं, नेताओं की समृद्धि पेपर में पढ़ने में आता है, नेता लोग बहुत समृद्ध है, पता नहीं किस जन्म का प्रारब्ध भोग रहे हो, इस परिभाषा से तो उनको जो समृद्धि देने वाला वो भी शिव ही है वो। हाँ, इंद्र को स्वर्ग का जो साम्राज्य दिया किसने, भगवान शिव ने दिया, और सर्वोच्च समृद्धि यद्रिद्धिम सुत्राम्णो भरद परमोच्च, हे वरद सुत्राम्णो समृद्धि परम उच्च, उससे ऊंचा कोई समृद्धि नहीं। ऐसा होता हुआ भी इंद्र की स्वर्ग की समृद्धि को अधचक्रे बाण, बाणासुर ने तुच्छ बना दिया। बाणासुर की जो समृद्धि थी उसके सामने इंद्र की समृद्धि तुच्छ हो गई। क्यों? इंद्र की समृद्धि केवल स्वर्गलोक की समृद्धि है। अब शिव भक्ति के चलते शिव प्रसन्न होकर बाणासुर को तीनों लोक के साम्राज्य दे दिया, तो स्वर्ग की समृद्धि तो बाणासुर की हो गई हो गई, साथ में मृतलोक की समृद्धि, पाताल लोक की समृद्धि, सारे लोक की समृद्धि किसके हो गई? बाणासुर की। इंद्र की मृतलोक की समृद्धि नहीं है, लेकिन बाणासुर की मृतलोक का भी समृद्धि उसको प्राप्त हो गया, इसलिए प्लस हो गया ना। स्वर्ग तो उसके हाथ में था ही भगवान की कृपा से, बाकी सभी लोग उसके अधीन में हो गया भगवान शिव की कृपा से, तो इंद्र की समृद्धि तुच्छ हो गया। ये किसने दिया? बाणासुर को शिव ने दिया। ये देखो, तुम्हें को फलदह, तमेको लोकानां परम फलदो दिव्य पदवीं। उपमन्यु को मोक्ष फल दो दिया। किसने दिया? शिव ने। बाणासुर को काम और अर्थ फल दिया, अपर समृद्धि अपर फल, और उपमन्यु को धर्म और मोक्ष फल दिया पर समृद्धि। किसने दिया? दोनों समृद्धि देने वाले एक ही शिव है। तो हम एक, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तमेको लोकानां परम फलदो दिव्य पदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ति हरिमुखः। हरि और मुखा, चार मुख वाले कौन? ब्रह्मा और हरि विष्णु, हरि मुखा नारायण आदि सारे देव, विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर आदि सब, हरि प्रमुखा ये भी अर्थ कर सकते प्र उपसर्ग लगाकर, हरि प्रमुखा भगवान नारायण प्रमुख हैं, ऐसे ब्रह्मा इंद्र कुबेर आदि सब, या हरि प्लस मुखा, हरि मुखा, मुखा मुखधारी चार मुख वाले और हरि एक मुख वाले है ना, तो हरि प्लस मुखा हरि मुखा। पुनरपि, अब आप लोग तो महिमनि स्तोत्र पढ़ते ही हो, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ, शिवपुराण महिमनि स्तोत्र पढ़ रहे हो ना, और झगड़ा का कारण क्या था पता है? हैं? ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा हुआ, वो झगड़े का कारण क्या था? ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व, कौन बड़ा कौन छोटा और कौन बड़ा। विष्णु कहने लगे कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है, मेरे नाभि कमल से कमल निकला, उस कमल का भी मल तू है इसलिए तू छोटा, कमल का कीड़ा। ब्रह्मा क्या हो गए? विष्णु के नाभि से निकलने वाला कमल, उस कमल में रहने वाला कीड़ा, कमल कीड़ा जीव ब्रह्मा। तो विष्णु ने कहा कि तू तो यदि कहा जाए तो मेरा बेटा कमल, कमल का बेटा तू, मैं तू तो मेरा पोता है। विष्णु का पोता हुआ कि नहीं ब्रह्मा? है विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, तो विष्णु का पोता हो गया, तू छोटा है। अब ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, क्या बात करता है, मेरा आसन कमल और आसन का पुत्र तू, देख आसन मां और तू बेटा, मां बेटे के नाभि का संबंध होता है कि नहीं? देख तू तो अभी अभी पैदा हुआ, अभी तो तेरा नाला छेदन भी नहीं हुआ है, हैं? मेरे आसन, ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, ब्रह्म का आसन कौन क्या है? कमल। और कमल का नाल किससे जुड़ा हुआ है? और मां के और बच्चे के बीच में नाभि का नाल जुड़ा हुआ तो रहता है कि नहीं? सद्योजात में अभी अभी जो पैदा हुआ बच्चा, उसको तो दाई आके काटती है, फिर गांठ लगाती है, क्या क्या करती है, तब अलग होते हैं, नहीं तो जुड़ा हुआ। और तू तो अभी पैदा हुआ, अभी तो दाई आई भी नहीं है, अभी से घमंड करने लग गया तू। अरे बड़ा होगा तो क्या करेगा तू? ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठ है उसको जो निम्न है, छोटा है, वह अभिवादन करे। बड़ा व्यक्ति छोटे को अभिवादन न करे, छोटा आशीर्वाद मांगे, बड़ा आशीर्वाद दे। आशीर्वाद के लिए अभिवादन करे, मांगे, अभिवादन करे तो आशीर्वाद की कामना करते हुए अभिवादन करे, और आशीर्वाद देने वाला स्वस्ति की कामना करते हुए स्वस्ति अस्तु करते हुए तुम्हारा कल्याण हो, तभी अभिवादन करने वाले का कल्याण होगा, आशीर्वाद होगा। नियम तो यह है। तो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तो मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो जीवात्मा उधर भीड़ लग गया, कहां? ब्रह्मा जी के घर। क्यों भीड़ लगा भाई? सब लोग शरीर लेने के लिए गए थे, शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा, और ब्रह्मा जी उनको जीव को शरीर देना छोड़कर झगड़ा में लग गए। तो बेचारे आंदोलन शुरू कर दिया, हमको जल्दी शरीर दो, जल्दी शरीर दो, झगड़ा बंद करो, जल्दी शरीर दो। और उधर विष्णु के वैकुंठ में झगड़ा शुरू हो गया। क्यों? अरे ब्रह्मा ने हमको जो बना तो दिया, लेकिन पालेगा कौन? हमको दूध दो, हमको पानी दो, हमको भोजन दो, हमको ले जी, पालन करने का काम विष्णु का। उधर विष्णु के यहां भूख से तड़पते हुए जीव मेरा पालन पोषण करो करके झगड़ा कर रहे, इधर ब्रह्मा के यहां प्रारब्ध पूरा होकर शरीर लेने आए हुए जीव शरीर के लिए झगड़ा कर रहे। भगवान शिव ने देखा कि क्या हो रहा है, उधर भी झगड़ा, इधर भी झगड़ा, सब जीव करा रहे, ये क्या हुआ? ऐसे देखा तो फिर दोनों, तो पालन करने वाला भी झगड़े में फंस गया और सृष्टि करने वाला भी फंस गया। तब कहा कि क्यों इन दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हुआ? बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। इनको ये बात का बोध करा देना चाहिए कि बड़ा कौन है, बस। ये बिना मतलब के झगड़ा में फंस गए, बड़ा कोई और है, लेकिन इनको भ्रांति हो गया कि मैं बड़ा हूं। भ्रांति का सिर पूछ नहीं होता है, वो होता है? भ्रांति का कोई सिर पूछ नहीं होता, हो गया भ्रांति। तो उन्होंने दोनों के बीच में अनल स्कंद वपुषा दिव्य अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को प्रकट कर दिया। तब दोनों के अस्त्र गायब हो गए, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र, वैष्णव दोनों गायब। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, इसने तो हमारे दोनों अस्त्र गायब कर दिए। तब इनको ये क्या है पता लगाते हैं। तो दोनों के बीच में संधि हो गई, समझौता हो गया, जो पहले पता लगा के आएगा कि इसका आदि कहां अंत कहां है, पहले पता लगा के जो आएगा वो ज्येष्ठ, बाद में पता लगा कर जो आएगा वो कनिष्ठ। तो इस आगे इसका इसका भी उल्लेख करेंगे। तो ब्रह्मा जी तो हंसारूढ़ है, पक्षी में आरूढ़ होकर चले गए ऊपर की तरफ, और विष्णु जी तो बराह तो थे ही, पहले से प्रैक्टिस था पाताल में जाने का, था कि नहीं बोलो? उनको तो प्रैक्टिस था ही, जब पृथ्वी पाताल चला गया, हिरण्याक्ष लेके चला गया, तो पाताल से खोजकर किसने लाया था बोलो? विष्णु ने बराह का रूप धारण किया, और तुरंत बराह का रूप धारण कर विष्णु नीचे चले गए और ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर ऊपर चले गए। तो दोनों को पता नहीं चला, तो दोनों आ गए। उसके पीछे और कहानियां ये फिर प्रसंग में बता देंगे। तब दोनों ने प्रार्थना की, महाराज हम आपकी अनंत महिमा को नहीं पार पा रहे हैं। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनके सामने कहा कि देखो घमंड मत करो, घमंड मत करो, ये संसार में कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये घमंड मत करो, अपना कर्तव्य करो बस। सृष्टि करना तुम्हारा काम, सृष्टि करो, पालन करने का काम तुम्हारा है, पालन करो, झगड़ा मत करो। यदि तुम कर्तव्य बुद्धि से परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्तव्य बुद्धि से करो, तब फिर उसमें होने वाले दोष तुमको स्पर्श नहीं करेगा। नहीं तो शरीर देने में विभेद करने का दोष ब्रह्मा को लगेगा कि नहीं है? लगेगा कि नहीं? तुमको मनुष्य का शरीर दिया, सुअर को सुअर का शरीर दिया, काक को काला शरीर दिया, हंस को गोरा शरीर दिया, ये विभेद करने का दोष लगेगा कि नहीं? और विष्णु को भी दोष लगेगा पालन करने के बारे में, विभेद कर रहे हैं, किसी को बढ़िया फल फेंक रहे हैं, खा नहीं खा पा रहे हैं और कूड़ेदान में फेंक रहे हैं अन्न, और किसी को एक कण नहीं मिल रहा है, तड़फ रहे हैं, पालन करने का काम उसका है, समर्थशाली है, सर्वव्यापक है। क्या सुदूर गांव झारखंड आदि दुर्गम गांव में वो नहीं है क्या? तो है तो फिर उनकी दाल रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं करता है? तो उनको सुबह शाम की दाल रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है, और यहां हम लोग फेंके रहे, रोज फेंक रहे हैं, हमको इतना दे रहा है कि हमको फेंकने पर भी खाया नहीं जा रहा है, और उनको दे नहीं रहा है कि एक टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। पालन करने का विषमता है कि नहीं बोलो? ये दोष नहीं लगेगा उसको? और रुद्र को कोई तो 80 वर्ष 90 वर्ष में भी नहीं मर रहा है, और कोई भरी जवानी में मार दिया, विषमता नहीं है ये? तो परमात्मा को हृदय में धारण करके ब्रह्म का स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म करो तो विषमता का दोष नहीं लगेगा, और अहंकार पूर्वक यदि तुम करोगे तो तुम्हें विषमता का दोष लग जाएगा। तो जाओ ओम नमः शिवाय जप करते रहो और अपना अपना कर्तव्य करते रहो। बोले महाराज हमारा हथियार क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी को दे दिया ब्रह्मास्त्र और विष्णु को दे दिया सुदर्शन चक्र, ले अपना अपना अस्त्र रखो और परमात्मा का स्मरण करो और भजन करो। तो तुम जाओ कहां? वैकुंठ में, और तुम जाओ ब्रह्मलोक में। इसके बाद शिव की कृपा से ही ब्रह्मा को ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अरे नाराज नहीं होना हो वैष्णव, भगवान शिव की कृपा से ही विष्णु को विष्णुलोक की प्राप्ति है। अरे जिस समय हम विष्णु की प्रशंसा करनी होगी उस समय कर देंगे, सुनने आना, फिर हीरो बना देंगे विष्णु को, है चिंता नहीं करना, ये विभेद बुद्धि नहीं रखना है। नहीं तो कहोगे कि महात्मा ने देखो विष्णु को छोटा बना दिया है, शिव जी को बड़ा बना दिया है। तो ऐसा दुराग्रह नहीं रखना, हम नहीं रखते तो तुम क्यों रखते हो?